एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज की जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। यीशु मसीह कौन थे? एक क्रांतिकारी, एक नैतिक गुरु या कुछ और? ये सवाल हजारों साल से पूछा जा रहा है और आज भी उतना ही ताजा है। इसने दुनिया को बदला है, सभ्यताओं को आकार दिया है और आज भी अरबों लोगों के लिए बहुत मायने रखता है।
बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि इस सवाल के, आप कह सकती हैं, दो पहलू हैं। एक है इतिहास के यीशु, मतलब वो इंसान जो 2000 साल पहले गलील में रहता था।
हाँ।
और दूसरा है विश्वास के मसीह, जिन्हें ईसाई ईश्वर का पुत्र मानते हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ये दोनों अलग अलग हैं।
हाँ, आम धारणा तो यही है कि एक साधारण इंसान था जिसे बाद में उसके अनुयायियों ने, मतलब बढ़ा चढ़ाकर भगवान बना दिया। लेकिन आज हम जिस विद्वान के काम पर बात करने वाले हैं, वो इस पूरी धारणा को ही चुनौती देते हैं।
रिचर्ड बॉकम।
हम बात कर रहे हैं रिचर्ड बॉकम की, और उनका तर्क है कि ये विभाजन ही झूठा है।
सही कहा। बॉकम का काम हमें एक बहुत ही रोमांचक सफर पर ले जाता है, ये दिखाने के लिए कि कैसे गंभीर ऐतिहासिक पड़ताल विश्वास को कमजोर करने के बजाय उसे और भी मजबूत कर सकती है। तो आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे।
तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले, ये रिचर्ड बॉकम हैं कौन? उनका नाम अकादमिक दुनिया में तो बहुत बड़ा है, लेकिन हो सकता है आम लोगों ने ज्यादा ना सुना हो।
देखिए, रिचर्ड बॉकम बाइबल स्टडीज की दुनिया के एक दिग्गज माने जाते हैं। वो स्कॉटलैंड की सेंट एंड्रूज यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहे हैं, जो इस विषय के लिए दुनिया के सबसे बड़े केंद्रों में से एक है।
अच्छा,
पर उनकी खास बात उनका पद नहीं, बल्कि उनका नजरिया है।
और वो क्या है?
देखिए, इस विषय पर आमतौर पर दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो बाइबल की हर बात को अक्षरशः सच मानते हैं, मतलब बिना किसी सवाल के।
कट्टरपंथी एक तरह से।
हाँ। और दूसरे वो संशयवादी, जो उसे सिर्फ पौराणिक कथाओं का संग्रह मानकर खारिज कर देते हैं। बॉकम इन दोनों के बीच एक बहुत ही अनोखा, एक बहुत संतुलित रास्ता अपनाते हैं।
मतलब वो एक तरह से पुल का काम करते हैं।
बिल्कुल सही शब्द। वो एक इतिहासकार की पैनी नज़र से सबूतों को जांचते हैं, लेकिन साथ ही एक धर्मशास्त्री की संवेदनशीलता के साथ उसके गहरे अर्थ को भी समझते हैं। वो कहते हैं कि हमें ना तो आंख बंद करके मानना है, न ही आंख बंद करके नकारना है।
हमें गहराई में उतरना होगा।
हाँ, बिल्कुल। उनकी सबसे मशहूर किताब जीसस एंड द आई विटनेसेस इसी सोच की नींव है।
तो बॉकम का मुख्यतर क्या है? मतलब वो कौन सी ऐसी बड़ी बात कह रहे हैं जो पहले नहीं कही गई?
उनका सबसे बड़ा, और मैं कहूंगी क्रांतिकारी आइडिया, हाय क्रिस्टोलॉजी से जुड़ा है। ये सुनने में थोड़ा भारी शब्द लगता है, पर इसका मतलब आसान है।
हाँ, इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाइए।
आमतौर पे लोग सोचते हैं कि यीशु की कहानी एक छोटे से स्टार्टअप की तरह थी, एक अच्छे नैतिक शिक्षक से शुरू हुई और कोई 300 साल बाद जाकर,
निवेशकों ने यानी चर्च ने,
हाँ, चर्च ने उसे एक बड़ी कंपनी यानी भगवान बना दिया। बॉकम कहते हैं कि ये पूरी तरह गलत है। उनके मुताबिक ये आइडिया पहले दिन से ही यूनिकॉर्न था।
वाह।
मतलब उनके सबसे करीबी साथियों ने उन्हें शुरू से ही ईश्वर के बराबर का दर्जा दिया था। ये कोई बात का आविष्कार नहीं था।
ये तो पूरी कहानी को ही पलट देता है ना?
हाँ, तो उनका कहना है कि यीशु को ईश्वर मानने का विचार उनके पहले अनुयायियों से ही शुरू हुआ था।
हाँ, और वो कहते हैं कि ये निष्कर्ष हवा में नहीं लिया गया था, ये उन लोगों के ऐतिहासिक अनुभव पर आधारित था जिन्होंने यीशु को अपनी आंखों से देखा, उनकी बातें सुनी और उनके कामों को महसूस किया। उनका पूरा काम हमें पहली सदी के यहूदी समाज में वापस ले जाता है, ताकि हम समझ सकें कि ये सब उस समय के लोगों के लिए क्या मायने रखता था। ठीक है, ये तो बहुत दिलचस्प लग रहा है। चलिए अब उनके तर्कों में और गहराई से उतरते हैं। उनका पहला और सबसे बड़ा दावा है कि गॉस्पेल्स यानी सुसमाचार विश्वसनीय ऐतिहासिक स्रोत हैं। आज के जमाने में ये मानना थोड़ा मुश्किल है, जहां लोग उन्हें सिर्फ धार्मिक कहानियां मानते हैं।
हाँ, और यही बॉकम के काम का आधार है। वो चश्मदीद गवाही का सिद्धांत सामने रखते हैं। वो कहती हैं कि ये कहानियां किसी अफवाह की तरह, मतलब गुमनाम रूप से नहीं फैलीं।
अच्छा,
इन्हें उन लोगों ने सहेजा और आगे बढ़ाया जो सच में वहां मौजूद थे, जैसे कि पत्रस, जिनसे मार्क ने जानकारी ली थी, या फिर यूहन्ना के गॉस्पेल में बार बार आने वाला प्रिय शिष्य, जो खुद को एक चश्मदीद के तौर पर पेश करता है।
लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है। घटनाएं होने और उनके लिखे जाने के बीच, मतलब 30 से 60 साल का फासला है। क्या हमारी याददाश्त इतनी भरोसेमंद होती है? हम सब जानते हैं कि 40 साल बाद दो लोग एक ही घटना को बिल्कुल अलग अलग तरीके से याद करते हैं, तो सिर्फ चश्मदीद होना इसे विश्वसनीय कैसे बना देता है?
बहुत अच्छा सवाल है और बॉकम इसका जवाब देती है। वो कहती हैं कि ये सिर्फ किसी एक व्यक्ति की निजी यादें नहीं थी, ये समुदाय की यादें थीं।
समुदाय की यादें?
हाँ, कम्युनिटी मेमोरी। उस जमाने में जब लिखना पढ़ना आम नहीं था, कहानियों को याद रखने और सटीकता से आगे बढ़ाने के तरीके होते थे। इन कहानियों को शुरुआती ईसाई समुदायों में बार बार सुनाया और सुना जाता था, और चश्मदीद गवाह जैसे पत्रस उस समुदाय में जिंदा थे और इन कहानियों की प्रामाणिकता की पुष्टि करते थे।
अच्छा,
तो ये एक व्यक्ति की धुंधली याद नहीं, बल्कि एक पूरे समुदाय द्वारा सहेजी गई परंपरा थी।
अच्छा, तो ये एक तरह का चेक एंड बैलेंस सिस्टम था। एक और बात जिस पर बॉकम बहुत जोर देते हैं वो है यीशु को उनके यहूदी संदर्भ में समझना।
हाँ,
ये इतना जरूरी क्यों है?
क्योंकि इसके बिना हम यीशु को समझ ही नहीं सकते। उन्हें उनके कल्चर से अलग करके समझना, ये वैसा ही है जैसे गांधी जी को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बिना समझने की कोशिश करना।
बिल्कुल, सब कुछ अधूरा रह जाएगा।
हाँ, यीशु की शिक्षाएं, उनके विवाद, उनकी वो कहानियां, पैराबल्स, सब कुछ पहली सदी के यहूदी धर्म के भीतर एक संवाद था।
मतलब वो यहूदी धर्म के विरोधी नहीं थे जैसा कि अक्सर दिखाया जाता है?
बिल्कुल नहीं। बॉकम तर्क करती हैं कि यीशु यहूदी धर्म को खत्म करने नहीं आए थे, बल्कि वे इसराइल और दुनिया के लिए ईश्वर के इरादों की एक खास यहूदी समझ को पूरा करने आए थे। वो अपने ही लोगों से बात कर रहे थे, उनकी अपनी परंपराओं के भीतर।
तो फिर उनका केंद्रीय संदेश क्या था? बार बार ईश्वर का राज्य, किंगडम ऑफ गॉड का जिक्र आता है, इसका मतलब क्या है? कोई जगह?
नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहीं पर ज्यादातर लोग गलती करते हैं। बॉकम इसे बहुत अच्छे से समझाती हैं। सोचिए, ईश्वर का राज्य कोई जगह नहीं बल्कि एक मूवमेंट है।
मूवमेंट?
हाँ, जैसे कोई सामाजिक आंदोलन होता है, #MeToo या #BlackLivesMatter, जो समाज के नियमों को बदल देता है, वैसे ही ईश्वर कह रहे थे कि ईश्वर का राज अब शुरू हो रहा है जो दुनिया के पावर स्ट्रक्चर को उल्टा कर देगा।
ये कोई भविष्य का वादा नहीं था बल्कि एक अभी यहीं वाली क्रांति थी।
हाँ, ये एक ऐसी हकीकत थी जो यीशु के कामों में दिखाई दे रही थी, जब वो बीमारों को ठीक करते थे, समाज से निकाले गए लोगों के साथ खाना खाते थे और अपनी कहानियों में बताते थे कि इस राज्य में अंतिम व्यक्ति पहला होगा और हारा हुआ विजेता बनेगा। ये दुनिया को देखने का एक पूरी तरह से नया, मतलब उल्टा पुल्टा तरीका था।
यहां तक तो ठीक है, लेकिन अब हम उस पॉइंट पर आते हैं जहां कई लोग असहमत हो जाएंगे। ये दावा कि ईश्वर को शुरू से ही ईश्वर माना जाता था, ये तो बहुत बड़ा दावा है ना?
हाँ, और बॉकम इसके लिए ईश्वर की पहचान में शामिल होने का तर्क देती हैं, इंक्लूडेड इन द डिवाइन आइडेंटिटी। ये एक बहुत ही बारीक लेकिन जरूरी बात है।
इसका क्या मतलब है? क्या यीशु ने खुद कभी साफ साफ कहा कि मैं ईश्वर हूँ?
नहीं, उन्होंने सीधे तौर पर ऐसा कभी नहीं कहा, और अगर वो कहते तो उस यहूदी समाज में उन्हें तुरंत ईश्वर निंदक मानकर मार दिया जाता।
सही बात है।
बॉकम कहती हैं, तो यीशु ने शब्दों से ज्यादा अपने कामों से ये दावा किया। उस समय के यहूदी विश्वास के अनुसार केवल ईश्वर ही कुछ काम कर सकता था, जैसे सृष्टि पर शासन करना, पाप क्षमा करना और आराधना स्वीकार करना।
ओके।
गॉस्पेल्स में यीशु को लगातार ये तीनों काम करते हुए दिखाया गया है। वो तूफान को शांत करते हैं, मतलब प्रकृति पर शासन, वो पाप क्षमा करते हैं जो केवल ईश्वर कर सकता है, और वो लोगों से आराधना स्वीकार करते हैं।
तो आप कह रहे हैं कि उनके अनुयायियों के लिए उनके कामों को देखकर ये निष्कर्ष निकालना स्वाभाविक था कि वो सिर्फ एक इंसान नहीं हो सकते?
बिल्कुल, उनके लिए यीशु को ईश्वर की पहचान में शामिल मानना ही उनके देखे हुए सच की सबसे अच्छी व्याख्या थी। ये कोई फिलोसॉफिकल आइडिया नहीं था जो उन्होंने बाद में बनाया, नहीं, ये उनके जिए हुए अनुभव का सीधा नतीजा था।
तो अगर वो इतने शक्तिशाली थे और ईश्वर की पहचान का हिस्सा थे, तो फिर उन्हें सूली पर क्यों चढ़ाया गया? ये एक नाकामी जैसा लगता है। ऐसा नहीं लगता कि योजना के अनुसार कुछ गलत हो गया?
इसके विपरीत, बॉकम इससे उनके मिशन का अनुमानित और तार्किक परिणाम कहती हैं। उन्होंने उस समय के धार्मिक और राजनैतिक सत्ता के केंद्रों को सीधे चुनौती दी। सोचिए, जब उन्होंने यरूशलेम के मंदिर में व्यापारियों की मेजें उलट दीं, तो ये सिर्फ गुस्से का प्रदर्शन नहीं था, वो उस पूरी व्यवस्था के दिल पर हमला कर रही थीं, जो गरीबों का शोषण कर रही थीं। ऐसा करने का नतीजा तो तय ही था।
और फिर आता है पुनरुत्थान,
रेजरेक्शन इतिहास की नजर से इसे कैसे देखा जाए? ज्यादातर इतिहासकार तो चमत्कारों को नहीं मानते।
बॉकम यहाँ एक बहुत साफ लकीर खींचती हैं। वो कहती हैं कि एक इतिहासकार यह साबित नहीं कर सकता कि कोई मरा हुआ इंसान जी उठा। यह विज्ञान और इतिहास के नियमों के बाहर है।
एक मिनट, तो क्या ये इतिहास के दायरे से बाहर है कहना थोड़ा आसान रास्ता नहीं हो गया? क्या बॉकम इस मुश्किल सवाल से बच रही हैं?
नहीं, वो बच नहीं रही हैं, बल्कि वो बता रही हैं कि इतिहास का काम क्या है। एक इतिहासकार ये तो नहीं बता सकता कि पुनरुत्थान कैसे हुआ, लेकिन उसे ये जरूर समझाना होगा कि उसके परिणाम क्या हुए।
अच्छा,
और यहाँ हमारे पास तीन ठोस ऐतिहासिक तथ्य हैं जिन्हें लगभग सभी विद्वान मानते हैं। एक, यीशु की कब्र खाली थी। दो, उनके शिष्यों को अलग अलग जगहों पर अलग अलग समूहों में ये अनुभव हुआ कि यीशु जीवित है।
और तीसरा?
और तीन, इन डरे हुए बिखरे हुए शिष्यों में अचानक एक ऐसा बदलाव आया कि वो अपनी जान की परवाह किए बिना ये संदेश पूरी दुनिया में फैलाने निकल पड़े।
तो बॉकम का तर्क यह है कि एक इतिहासकार को ये समझाना होगा कि इन तीन तथ्यों का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण क्या है।
सटीक। और बॉकम के अनुसार इन शिष्यों का ये दृढ़ विश्वास कि यीशु सचमुच जी उठे हैं ही इन सभी घटनाओं का सबसे तार्किक और ऐतिहासिक रूप से संतोषजनक स्पष्टीकरण है। किसी और सिद्धांत में, जैसे कि शिष्यों ने लाश चुरा ली या उन सबको एक जैसा वहम हो गया, उनमें ज्यादा ऐतिहासिक समस्याएं हैं।
तो अगर हम इस पूरी बातचीत को देखें तो कुछ मुख्य बातें साफ उभर कर आती हैं। पहली तो ये कि इतिहास और विश्वास दुश्मन नहीं है।
हाँ, ये शायद सबसे बड़ा सबक है। बॉकम दिखाती हैं कि ईमानदारी से की गई ऐतिहासिक खोज आपके विश्वास की नींव को हिला नहीं देते, बल्कि उसे और भी मजबूत बना सकती है।
दूसरी बात जो मुझे समझ आई वो ये है कि गॉस्पल्स ना तो कोरा इतिहास है और ना ही कोरी कल्पना, बल्कि ये ऐतिहासिक घटनाओं की धार्मिक व्याख्याएं हैं। इसका मतलब है कि वे सिर्फ ये नहीं बता रहे कि क्या हुआ, बल्कि ये भी बता रहे हैं कि उसका मतलब क्या था।
बिल्कुल, ये हमें दो गलतियों से बचाता है। एक, उन्हें आंख बंद करके एक विज्ञान की किताब की तरह पढ़ने से, और दो, उन्हें पूरी तरह से मनगढ़ंत मानकर फेंक देने से। उनमें गहरा ऐतिहासिक सत्य है जिसे एक उद्देश्य के साथ प्रस्तुत किया गया है।
और आखिर में बॉकम का अंतिम निष्कर्ष, इतिहास की यीशु और विश्वास के मसीह एक ही व्यक्ति हैं।
सही। यह कहना कि असली यीशु तो बस एक अच्छा शिक्षक था और उसके अनुयायियों ने उसे भगवान बना दिया, ये सबूतों की अनदेखी करना है। बॉकम का तर्क है कि उनके अनुयायियों की गहरी धार्मिक समझ उनके ऐतिहासिक अनुभव का ही परिणाम थी, उससे अलग कोई चीज नहीं। जो यीशु इतिहास में जिए वही वो मसीह हैं जिन पर आज विश्वास किया जाता है।
ये सब एकेडमिक तौर पे तो बहुत आकर्षक है, लेकिन आज के दौर में एक आम इंसान के लिए इसका क्या मतलब है? ये हमारी जिंदगी को कैसे छूता है?
इसके दो बहुत ही ठोस प्रभाव है। पहला है अंतर धार्मिक संवाद, खासकर ईसाई यहूदी संबंधों में। सदियों तक यीशु को यहूदी धर्म के विरोधी के रूप में दिखाकर बहुत नफरत फैलाई गई है। जब हम बॉकम की तरह यीशु को उनकी यहूदी जड़ों से जोड़कर देखते हैं तो ये सम्मानजनक बातचीत और आपसी समझ का एक नया रास्ता खोलता है।
और दूसरा, आपने सामाजिक न्याय की बात भी की थी।
हाँ, यीशु का मिशन सिर्फ आध्यात्मिक या परलोक के बारे में नहीं था। उनका जानबूझकर गरीबों, बीमारों और समाज से बाहर किए गए लोगों के साथ उठना बैठना, उनके साथ खाना, ये उस समय के सामाजिक ढांचे पर एक सीधा हमला था।
सही है।
बॉकम हमें दिखाती हैं कि यीशु का ईश्वर का राज्य अन्यायपूर्ण व्यवस्थाओं को चुनौती देता है। ये हमें याद दिलाता है कि व्यक्तिगत विश्वास और सार्वजनिक कार्रवाई में गहरा नाता है। यह सिर्फ मन की शांति के बारे में नहीं है, बल्कि दुनिया में न्याय लाने के बारे में भी है।
जाते जाते एक विचार, बॉकम का काम मेरे मन में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या किसी भी ऐतिहासिक व्यक्ति को समझने का सबसे अच्छा तरीका उन लोगों की गवाही को गंभीरता से लेना नहीं है जो उन्हें सबसे करीब से जानते थे? बजाय इसके कि हम सदियों बाद बैठकर अपनी आधुनिक धारणाएं और अपने पूर्वाग्रह उन पे थोपें।
ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। क्या कभी कभी हम असली ऐतिहासिक सच की तलाश में उन प्राथमिक स्रोतों पर यानी चश्मदीदों पर बहुत ज्यादा अविश्वास कर बैठते हैं? और क्या इस प्रक्रिया में हम अतीत के बारे में कम और अपने आज के पूर्वाग्रहों के बारे में ज्यादा जाहिर करते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ यीशु के अध्ययन पर ही नहीं, बल्कि इतिहास को समझने के हमारे हर प्रयास पर लागू होता है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।